नियमों के पालन से कल्याण, लोक में शिक्षा का बड़ा महत्व है, परंतु उसको धारण करना और आचरण में लाना ये उससे भी ज्यादा महत्व की बात है। किसी भी प्रकार की शिक्षा की बात कही जाए, ज्यों ही कहा जाए त्यों ही धारण कर ले तो जल्दी से जल्दी काम हो सकता है, परंतु सुनते समय तो बात अच्छी लगती है और फिर वो दिमाग में ही नहीं रहती, काम में लाने की बात तो बहुत दूर है, तो रोज सुनो कोई लाभ नहीं है। मन में एक झूठा संतोष होता है कि हम सत्संग करते हैं, यह स्थिति आप लोगों की मैं देख रहा हूं। सेठ जी ने कहा है थोड़ी देर या ज्यादा शिक्षा की बात सुन ली पर उसे काम में कौन लाता है, बहुत कम आदमी है जो इधर ध्यान देते हैं। काम में लाने का तरीका यह है कि इन बातों को महत्व देवें कि देखो ये कितनी महत्व की बात है, ये शास्त्रों में हमारे कल्याण के लिए लिखी है, महात्मा लोग हमारे कल्याण के लिए बोलते हैं, कितनी महत्व की बात है। तो हम लोगों के मन में ये बातें सुनकर के उत्साह आना चाहिए, तिल भर भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो। संसार के काम धंधे में प्राण निकल जाते हैं परंतु परवाह नहीं करते, सत्संग की बात को काम में लेने पर कोई प्राण तो निकलते नहीं है, यदि निकल भी जाए तो उससे लाभ ही लाभ है। इतना दृढ़ विश्वास रखे तो जल्दी काम हो सकता है। यदि आपने आलस्य के कारण, शरीर के आराम के कारण, किसी और लोभ लालच के कारण बात की अवहेलना कर दी तो ये बड़ा मुश्किल काम है, संसार से ऊपर उठना बड़ा मुश्किल काम है। कल ही हमने महाभारत की कथा पढ़ी, पढ़कर के मन में आश्चर्य हुआ कि देखो ये जरत्कारु ऋषि है, कितने बड़े ऋषि थे, उसकी स्त्री ने सायंकाल में उसे उठा दिया क्योंकि सायंकाल में सोना नहीं चाहिए, चाहे प्रातःकाल की संध्या हो चाहे सायंकाल की संध्या हो सोना नहीं चाहिए, छोटा बच्चा हो या बीमार हो या बूढ़ा हो, इनको छोड़ करके सायंकाल के समय में सोना नहीं चाहिए, विशेषता से भगवान का भजन करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए। तो उस स्त्री ने, पत्नी ने अपने पति को जगा दिया और कहा कि हे प्राणनाथ, आपकी संध्या का समय हो गया। वह दोपहर से तीसरे पहर तक नींद में सोया था और उसका सिर अपनी पत्नी की गोद में ही था। जब सायंकाल होगा तब तक बिचारी पत्नी बोली नहीं, बड़ी पतिव्रता थी, पति को आराम मिल रहा है, कुछ नहीं बोली। लेकिन जब संध्या ही हो गई तब स्त्री ने देखा कि इनका नित्यनेम भी होना चाहिए, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, तो उस स्त्री ने उनको उठा दिया। तो वह जरत्कारु ऋषि स्त्री पर क्रोध करके बोला, मुझे क्यों उठा दिया भाई, उसने कहा महाराज देखो सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे हैं, आपका नियम है कि सूर्य के रहते हुए संध्या कर लेना, यदि मैं आपको नहीं उठाती तो आपके धर्म में बाधा पड़ती, इसलिए आपको उठा दिया। तो उन्होंने उत्तर दिया अच्छा मैं तो सोता रहूं और सूर्य अस्ताचल को चले जाए, इतनी सूर्य में ताकत नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। सूर्य मेरे सोते सोते अस्ताचल में चला जाए कभी संभव नहीं है, इस बात का मेरे मन में दृढ़ विश्वास है, निश्चय है मेरे मन में कि जब तक उठकर मैं संध्या नहीं कर लूंगा तब तक सूर्य को छिपने का अवसान नहीं मिलेगा। इतना दृढ़ विश्वास जरत्कारु को किस बात पर था कि वे रोज सूर्य की उपासना करते थे और सूर्य भगवान भी उनकी उपासना को स्वीकार करते थे। सूर्य के रहते हुए जो संध्या करनी है तो सूर्य भी उसके लिए ठहर जाते हैं, ये अपने नियम का प्रभाव है। तो हम पर असर पड़ा कि ये कितनी आश्चर्य की बात है, जरत्कारु को कितना विश्वास था। इसी प्रकार पतिव्रता स्त्री की भी बात आती है। एक पतिव्रता स्त्री ने कहा कि अच्छा कल सूर्योदय होने से मेरे पति मर जाएंगे तो मैं सूर्य को उदित ही नहीं होने दूंगा। सूर्य की चाल बंद कर दी उसने, सूर्य वहीं ठहर गए। फिर उस स्त्री को आकर देवताओं ने वरदान दिया कि तुम्हारे पति तुम्हारे शरीर के रहते हुए नहीं मरेंगे, तब उन्होंने सूर्य को आदेश दिया। उस स्त्री में इतना बल कहां से आया, केवल पतिव्रता धर्म का पालन करने से। ऐसे ही आप लोगों ने महाभारत में भी सुना होगा, जयद्रथ के लिए सूर्य भगवान ने ऐसी आश्चर्यजनक बात दिखाई कि जब जयद्रथ मारा गया तो हो हल्ला मच गया कि अन्याय हो गया अन्याय हो गया, सूर्य के अस्त होने पर जयद्रथ मारा गया। भगवान ने कहा देखो आकाश में सूर्य विद्यमान है, प्रत्यक्ष है, अपनी आंखों से देखो, सूर्य अस्ताचल में नहीं गए हैं। सब लोग देखने लगे, भगवान सृष्टि की रचना करने वाले हैं, वे चाहे जैसा कर सकते हैं। भगवान के बिना भी संध्या करने वाले व्यक्ति का प्रभाव और पतिव्रता स्त्री का प्रभाव आपने देखा, परंतु आजकल ऐसा प्रभाव देखने में नहीं आता है। ऐसा मालूम होता है कि सब मर गए या चले गए, परंतु पुराने जमाने में ऐसी बातों के लिए कोई आश्चर्य नहीं था। आपको विश्वास करना चाहिए कि ये बातें शास्त्रों में लिखी हैं, कोई गलत नहीं है। उस समय के लोग नियम के बड़े पक्के होते थे, चाहे जो कुछ हो जाए नियम का पालन करते थे। अपने में ये दोष आ गया कि थोड़ी सी आपत्ति आ गई, थोड़ी सी असुविधा हो गई, थोड़ा सा शरीर में कुछ कष्ट हो गया तो नियम को ताक पर छोड़ देते हैं और सुविधाओं के पीछे भागते हैं। अब हम क्या कहें, ये एक प्रकार से डॉक्टर की दवाई में जो मदिरा मिली रहती है इनके सेवन में समझो कि कितना भारी महापाप है। किसी प्रकार से भी यदि एक बार भी मदिरा पी ले तो बड़ा भारी दोष है, शास्त्र इसका घोर विरोध करता है। यदि आप इसका प्रायश्चित करना चाहें तो गायत्री मंत्र का जिनका यज्ञोपवीत हो गया है उनको 1000 जप रोज 3 साल या 1 साल तक करने का विधान है। वो भी यदि अज्ञात अवस्था में आपने मदिरा सेवन किया है तो, और एक बार किया हो तो, यदि रोज मदिरा पीते हो तो सोचो वो कितने बरस तक करेगा। तो डॉक्टरी दवाई कोई मुंह से खा लेते हैं, कोई इंजेक्शन के द्वारा खाते हैं, थोड़ी भी आपत्ति आ जाए तो लोग जरा सा भी शरीर के ऊपर कष्ट बर्दाश्त नहीं करते हैं, झट अपने व्यर्थ से च्युत हो जाते हैं। परंतु वे पुराने जमाने के लोग कितने पक्के थे, प्राण चले जाए पर धर्म का त्याग नहीं करते थे, तो धर्म भी उनका त्याग नहीं करता था। इसलिए कहा कि धर्मो रक्षति रक्षित है, अर्थात जिस धर्म की हम रक्षा करेंगे वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। राजा युधिष्ठिर पर भारी से भारी विपत्ति आई पर इन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया। उसका ये प्रभाव था कि जिस देश में राजा युधिष्ठिर वास करते उस देश में अकाल नहीं पड़ता, महामारी नहीं पड़ती, देवी प्रकोप नहीं होते, धन की वृद्धि होती, धान्य की वृद्धि होती, धर्म की वृद्धि होती, सत्य की वृद्धि होती, क्योंकि वे सत्य बोलते थे इस वास्ते सत्य की वृद्धि होती। जो आदमी धर्म का पालन करता है उसका इतना प्रभाव पड़ता है कि उसके सामने दूसरे लोग भी धर्म का पालन करने लग जाते हैं। कोई महात्मा के पास जाता है तो कहता है महाराज, उसके सामने या और के सामने तो मैं नहीं कहूंगा, न मैंने कहा है, आपके सामने सच्ची सच्ची बात कहता हूं। क्यों? जो औरों के सामने झूठ बोलता है वो महात्मा के सामने झूठ क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो महात्मा सच्चा है, इसलिए उसके सामने झूठ बोल नहीं सकता है। यहां तक बताया गया है कि युधिष्ठिर के शरीर से खून निकलकर यदि जमीन में गिर जाए तो 12 बरस तक अकाल पड़ जाए। राजा नहुष ने उनसे वार्तालाप किया तो नहुष का पाप नष्ट हो गया। बातचीत करने से, प्रश्नोत्तर करने से, दर्शन करने से पाप का नाश होता है, कितने महत्व की बात है। क्यों? क्योंकि वे धर्म पर डटे रहे, इसलिए मृत्यु भी उनसे दूर रहा करती थी। वे अपने इसी शरीर से स्वर्ग चले गए। उनकी सब जगह जाने आने की गति थी, चाहे स्वर्ग हो चाहे बैकुंठ हो, जहां इच्छा होती चले जाते। क्यों? उनके पास धर्म था, सत्य का पालन करते थे। और इससे ज्यादा हम क्या बताएं, सत्य के प्रभाव से उनके रथ का पहिया जमीन से ऊपर चलता था। उनके रथ को, रथ के वजन को पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी। जब युधिष्ठिर महाराज रथ पर पैर रखते तब जमीन से रथ के पहिए अपने आप ऊपर उठ जाते थे। अपनी आयु में एक बार झूठ बोले और उस झूठ का नतीजा यह हुआ कि उसी दिन से उनका रथ का पहिया जमीन पर आ गया। जिस दिन उन्होंने अश्वत्थामा के मरने के समय में थोड़ा सा जबान दबा करके बोल दिया, अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, एक हाथी का नाम अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा मारा गया, इस आवाज को वो जोर से बोले किंतु हाथी, ये थोड़े से शब्द में कहा। बिचारे बोले तो साँच ही थे, परंतु एक प्रकार से थे वो सत्य को चबा गए थे। तो शब्द तो सांच कहा किंतु गुरु द्रोणाचार्य ने ये नहीं सुना कि अश्वत्थामा मरा है या हाथी मरा है, इसमें थोड़ा कपट था। द्रोणाचार्य को अपने शिष्य पर विश्वास था, अश्वत्थामा की मृत्यु सुन करके हुए रणभूमि में शस्त्र त्याग करके बैठ गए, प्राण त्याग दिए। जिस द्रोणाचार्य जिन द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को खिलाया पिलाया, वे द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर जी को कितना सत्यवादी मानते थे और उनके विश्वास पर प्राण त्याग दिए, क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने यही समझा कि इस पृथ्वी पर सत्यवादी है तो एक युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर की बात सच नहीं मानी गई, बात सच नहीं समझी गई। अपने किसी को कोई बात कहे और समझावे तो वह जो समझे वही बात सच मानी जाए, वही ठीक है। अपने कहने का कोई मूल्य नहीं है यदि वह ठीक से नहीं समझे तो। अपनी नियत में कोई दोष नहीं होना चाहिए, शब्द तो कह दिया किंतु उसमें कुछ कपट है तो वो एक प्रकार से झूठ ही है। इस प्रकार सत्य के प्रभाव को दिखाया और सत्य के त्याग का प्रभाव भी दिखाया है। इन बातों को आप लोग याद करके अपने जीवन में उतारने की क्यों नहीं चेष्टा करते हैं? अपने लोगों ने कितनी बार सत्संग का नियम बनाया है, भाई जी वगैरह ने भी बनाया, कई दिन तक उसे काम में भी लाए फिर छोड़ दिया, फिर बनाया फिर छोड़ दिया, इससे क्या लाभ हुआ? लाभ तो तभी हो कि जो बात आपके मन में जच जाए, चाहे वो छोटी सी भी बात हो, छोटा भी नियम, उस पर दृढ़ रहना चाहिए। एक तरफ तो प्राण का पालन करें और एक तरफ नियमों का पालन करें, दोनों का पालन नहीं हो सकता। कल ही हमने कथा पढ़ी, श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि उसके पिता महर्षि शमीक ने उसे उपालंब दिया। अरे वत्स, ये क्या किया? राजा परीक्षित तो धर्मात्मा है, सब प्रकार से रक्षा करता है, उस राजा को तुमने शाप दिया, अच्छा नहीं किया, गलती की है। पुत्र ने बहुत जोर देते हुए कहा कि नहीं महाराज, मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है, ये राजा लोग और मदांध होकर के ऋषियों का अपमान किए हैं, आपके गले के अंदर मरा हुआ सांप डाला है, अतएव मैंने शाप देकर उचित किया है, मेरी बात एकदम सोले आना होकर के रहेगी, मैंने कभी भी विनोद में भी झूठ नहीं कहा है, मैं स्वेच्छा पूर्वक या स्वाभाविक रूप से भी बोलता हूं तो मैं भी झूठ नहीं बोलता हूं, किसी से मजाक में भी मैं झूठी मजाक नहीं करता हूं, अतएव मेरा वचन तो सत्य होकर रहेगा, राजा को अवश्य मरना पड़ेगा। पिता ने भी कहा कि भाई तू है तो सत्यवादी, बचपन से भी मैंने देखा है तू सत्य बोलता है, तेरी कभी बात झूठी तो मैंने सुनी नहीं, और इस हिसाब से तो राजा को मरना पड़ेगा। पर एक बात फिर कहूं, तू बच्चा है, मैं तेरा पिता हूं, पिता का कर्तव्य है कि उसके सामने लड़के सदैव बच्चे ही रहते हैं, चाहे तू कितना ही उम्र में ज्यादा हो जाना, मेरे सामने तो बच्चा ही है, इसलिए अब भी मेरा यही कर्तव्य है कि यदि तू गलती करे तो मैं तुझे समझाऊं कि यह बात तूने गलत की है। तो मैं राजा परीक्षित को यही बात कहूंगा कि मेरे मूडमदी लड़के ने जो उसको शाप दिया है वो शाप तो मिथ्या होगा नहीं, तुम इसके बचाव का कोई प्रयत्न करो। ये तो मैं जाकर कह ही सकता हूं ना राजा को, तुमने जो कुछ किया है उसके लिए मैं सावधान करूंगा। उसका भेजा हुआ जो शिष्य था वो भी सदाचारी था, शमीक ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा और उसने जाकर महाराज की राजा परीक्षित की सभा में जाकर सब सभासदों के बीच में खड़े होकर ललकारते हुए कहा, महाराज परीक्षित, आज आपने जिस ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला है उस ऋषि के पुत्र ने आपको 7 दिन की मृत्यु का संकेत दिया है और उनकी बात कभी भी झूठ होने वाली नहीं है। शमीक ऋषि ने कहा है कि मेरे लड़के ने बड़ी भारी गलती की है, अपराध किया है, लेकिन उसकी बात तो कभी झूठी नहीं होगी, आपको सावधान हो जाना चाहिए। राजा ने कहा, यदि उनके शाप से मर जाऊंगा तो मुझे कोई चिंता तो नहीं है, परंतु मुझसे अपराध हो गया इसकी बड़ी भारी चिंता है, मैंने उनके गले में सांप डाल दिया। अब देखिए, सांप देने वाले पर परीक्षित ने दोष नहीं लगाया, अपने ऊपर दोष लगाया कि मैंने बड़ी भारी गलती की, गले में सांप डाल दिया। उस धैर्यशाली ऋषि के गले में सांप डाल दिया तो वह वैसा ही बैठा रहा, सांप जैसे डाल दिया वैसा ही रहा। यह नहीं कि राजा पर क्रोध किया, वह सांप कंधे पर ही पड़ा रहा। ऋषि में कितना बड़ा धैर्य, और उसके पुत्र ने उसको सांप दिया। आजकल का पिता कहता है कि वाह बेटा, तूने अपने पिता के प्रति बड़ा अच्छा प्रेम निभाया, उसने जैसी दुष्टता की उसके साथ तुमने सांप देकर बड़ा अच्छा किया। परंतु विचार करो, शमीक ऋषि ने कितना अपने बेटे को फटकारते हुए कहा कि तुमने बड़ा अनुचित किया है, तेरा ये करना उचित नहीं था, मेरा बेटा होकर, ब्राह्मण होकर के इतने से भी तुम सहिष्णु नहीं हो, कितना फटकारा है। और राजा के पास ऋषि ने ये बात कही कि मेरा मूढ़मति लड़का बाल सफलता के कारण आपके द्वारा अपराध हो गया, उसके बदले में शाप दिया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, इसलिए हर एक बात में आपको शिक्षा लेनी चाहिए। आजकल मैं महाभारत पढ़ता हूं तो मुझे ऐसी ऐसी शिक्षा की बातें मिलती हैं कि मैं हरदम उनमें रमा रहता हूं। यूं तो महाभारत मैंने पहले भी सुना है, पढ़ा है, परंतु बार बार पढ़ने से नए नए भाव जागृत होते हैं, बड़ी शिक्षा मिलती है। मनुष्य को अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहना चाहिए, और दृढ़ता ही नहीं है तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? उस कर्म को करने से सफलता, उस कर्म को करने में सफलता नहीं, उस पर आप दृढ़ रहते हो, उस दृढ़ भाव से लाभ होता है। इसलिए अपना जो कर्तव्य है, नियम पालन है, उसे सदा काम में लाना चाहिए, किसी अवस्था में अपने नियम से विचलित नहीं होना चाहिए। कोई भी आपत्ति आ जाए, कानून की आपत्ति आ जाए, अरे और तो और शरीर की आपत्ति आ जाए, कानून की हो या कोई भाई बंधुओं की हो, परिवार वालों की हो, सरकार की हो, आ जाए आ जाए, नियम को क्यों छोड़ो? यद्यपि सरकार का कानून नहीं मानोगे तो सरकार दंड देगी तो दंड दे देंगे, दंड सहन कर लेंगे। यह नहीं कि नहीं माननी चाहिए, कोई जरूरत नहीं, क्या है अपने क्यों दंड भोगे, अपने अपना छोड़ो ना इसको। इस तरह की अपने अंदर कर्तव्य से विमुखता नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों का आप पालन करो। मैंने कल जो बात पढ़ी वह आपको बताई, कल भी काम पड़ा था, रोज काम पड़ता है, वह ताजी बात है, इस कारण आपको कल की बात बतलाई। कल महाभारत में सब बातें पढ़ने में आई थी, इससे मन में ये भाव उठा कि मनुष्य को खूब मजबूती रखनी चाहिए। आप ही अपने धर्म में मजबूत नहीं होंगे तो आपके धर्म के पालन में दूसरा कौन मजबूत होगा? दो तीन दिन पहले उपमन्यु की बात पढ़ी, उपनिषदों की बात, तो उसमें गुरुजी ने ये बात कही कि बेटा उपमन्यु, तू भिक्षा लाकर सीधा मुझे दे देता है और फिर भी तू मोटा ताजा है, क्या बात है रे, तू कहां खाता है? मैंने तुमको खाने के लिए भिक्षा दी नहीं, मैंने कहा कि जो भिक्षा है मुझे दे दिया कर, तो भी तू बिना खाए पिए मोटा कैसे है? वह बोला, तो इधर तो मैं भिक्षा लाता हूं, आपको दे देता हूं, फिर दोबारा चला जाता हूं और भिक्षा ले आता हूं और खा लेता हूं, इसलिए मोटा ताजा हूं। अरे ये बात शास्त्र विरुद्ध है, दो बार भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, भिक्षा एक बार मांगनी चाहिए और जितनी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। दो बार भिक्षा मांगना देने वाले के भार पड़ता है। क्या ठीक है महाराज, अब नहीं मांगूंगा, लेकिन फिर भी वो मोटा ताजा, फिर गुरुजी ने बोला, अरे सारी भिक्षा तो लाकर मुझे दे देता है और आजकल तो दोबारा भी नहीं जाता है और मैं तुमको भिक्षा देती न, देता नहीं हूं, फिर तुम कैसे मोटे ताजे होगे? वो बोला, महाराज भूख खूब लगती है तो आपके यहाँ गाय है, गायों का खूब दूध पी लेता हूं तो दूध पीने से मोटा हो जाता हूं। गुरु जी, अरे नहीं, गाय का दूध भी आज से बंद है, तो दूध नहीं पिएगा। तू दूध पिएगा तो बछड़े क्या पिएंगे? बछड़े को भूखा मार के तू दूध पीता है? नहीं पीना है। ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा, नहीं पीऊंगा। लेकिन थोड़े दिन बाद देखो तो और मोटा हो गया। गुरुजी ने पूछा, अरे तू भिक्षा भी नहीं लाता और गाय का दूध भी नहीं पीता, फिर भी तू मोटा ताजा है? वो बोला कि गुरुदेव, जब बछड़ा दूध पीता है तो वो झाग करता है, उसके मुंह के चारों तरफ झाग आ जाते हैं। फिर मैं जाकर उस बछड़े के पास जाकर ऐसे झाग चाट लेता हूं, झाग चाट लेने से मेरी भूख दूर हो जाती है। और एक बछड़ा तो है नहीं, कितने ही बछड़े हैं, सब बछड़ों को जा जा करके मैं चाटता रहता हूं, झाग चलाऊ और खूब सारे झाग का दूध चला जाता है। और जो झाग का दूध होता है वो बड़ा बल देने वाला होता है। तो आप चाहे मेरी भिक्षा बंद कर दो, चाहे दूध बंद कर दो, ये झाग से मेरी भूख दूर हो जाती है। गुरु ने कहा, अरे बछड़े जो दूध पीते हैं वे तेरे खातिर थोड़ी पीते हैं, वो तो अपने लिए पीते हैं। उनका जो झाग होता है उस झाग को तो वो बाद में खुद चाटते हैं, तू जाकर पहले से ही चाट लेता है, ये झाग भी पीना बंद करो। अच्छा महाराज, ये भी बंद कर दिया तब फिर वो भूखे मरने लगा। तब उसको जोर से भूख लगी तो उसने देखा कि ऐसी चीज खा जाओ जिसमें दूध भी हो और जिसमें भोजन भी हो। उसने जाकर आग का पत्ता खा लिया, आग में दूध भी होता है भोजन भी होता है, बच्चा नादान था खा लिया। अब आग का पत्ता खाने से अंधा हो गया। और एक दिन बेचारा वो जा रहा था, जाते जाते कुएं में गिर गया। गुरुजी ने शिष्यों से पूछा, अरे भाई आजकल उपमन्यु नहीं दिखाई दे गया, क्या जंगल में ही है, आया नहीं, क्या बात है? बोले ठीक है। शिष्यों ने कहा, नहीं आया तो चलो अपने सब मिल करके ढूंढते हैं। गुरुजी साथ में गए, जंगल में खोजते खोजते तो कुएं के अंदर मिला। गुरुजी, अरे उपमन्यु तुझे कुएं में किसने पटक दिया भाई? बोलो बेटा तुम कुएं में कैसे गिर गए? बोला, महाराज जब मेरा खाना पीना बंद हो गया तो मुझे जोर से भूख लगी तो मैंने आग का पत्ता खा लिया, उससे अंधा हो गया और गायों के पीछे पीछे चराने के लिए जा रहा था, ध्यान रहा नहीं तो मेरा पैर फिसल गया, कुएं में गिर गया। तब गुरुजी ने कहा, अश्विनी कुमार का जो स्तोत्र है उसका तू पाठ कर। तो वो अश्विनी कुमारों का पाठ किया तो अश्विनी कुमार वहां आ गए। आकर बोले कि ले तो ये अमृत पी ले। वे बोला, मैं गुरु के दिए बिना ये अमृत नहीं पीऊंगा, गुरु की आज्ञा होगी तो पीऊंगा नहीं तो नहीं पीऊंगा। फिर अश्विनी कुमार ने नेत्र भी दे दिया, बल भी दे दिया और फिर उसके बाद गुरु जी के पास आया, सारी बात कही। गुरु ने कहा कि जाओ बेटा, तुम्हारे को शास्त्र का ज्ञान हो गया, तेरा अभीष्ट कार्य हो गया, जाओ तेरा काम पक्का हो गया, वेदों का ब्रह्म का उसे सब ज्ञान हो गया। इस प्रकार से गुरु ने उपदेश दिया। सो कोई बात हो तो उसको दृढ़ता की ओर ख्याल करना चाहिए। जो बात अपने गुरुजनों ने पूज्य जनों ने कह दी उसे जरूर करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। वह काम तो करे ही नहीं जिस बात को शास्त्र ने मना ही कर दी, या अपने माता पिता बड़े लोग जो मना करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो इन्होंने कही हुक्म किया उसके लिए अपने जीवन में आपको करना चाहिए। जिस बात की मनाही कर दी वो बात वहीं बंद कर दी तो तो उनके आशीर्वाद से कल्याण होता है। उसने पढ़ाया लिखाया कुछ भी नहीं, केवल परीक्षा ली थी, हुक्म दिया था, और हम लोगों को ये बताने के लिए कि एक सदगुरु की आज्ञा के पालन से कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञान का रहस्य छिपा रहता है। कितनी बड़ी कड़ाई की गुरुदेव ने, हद से अधिक थी। उसको आग का पत्ता मजबूरन खाना पड़ा, अंधा हो गया, कुएं में गिर गया, कुएं से निकल नहीं पा रहा था, पड़ा रहा, लेकिन कभी उसने गुरु में दोष नहीं देखा। ये नहीं कहा कि मेरी भिक्षा बंद क्यों, गाय का दूध बंद क्यों, झाग भी बंद क्यों। तब ब्रह्म ज्ञान मिला है। और अश्विनी कुमार अमृत दे तो भी अमृत नहीं पिया, खाने के लिए पुआ दिया तो नहीं खाया, अमृत पीने के लिए दिया तो नहीं पिया, और गुरु का हुक्म मानता गया। तो उन सब शिष्यों के अंदर विचित्र विचित्र बातें आई। तीन शिष्य थे, तीनों में यही बात थी। गुरु ने कहा इन लोगों ने इसका पालन किया है। वे शिष्य आगे जाकर बड़े महान आचार्य हुए और उनके भी शिष्य बड़े श्रेष्ठ हुए। उन्होंने इतनी कड़ाई नहीं की जितनी इनके गुरु जी ने की थी। उन्होंने कहा कि हमने अपने गुरु की कड़ाई देखी है, सही है, हम उतनी कड़ाई नहीं करेंगे। इसी तरह से उस समय में शाप देना तो गुरु के हाथ में था, इसमें भी देरी नहीं होती थी, परंतु उसमें भी कल्याण छिपा रहता था। जरा सी बात गुरुजनों की बात में शिष्य लोग उग चूक कर देते तो उठा करके बैंत मार देते थे, पर उस समय में तो वचन ही तो बैंत था, जरा सा उग चूक हो जाए तो शाप दे देते थे। उत्तंक ऋषि अपने गुरु की आज्ञा पालन में एकदम निपुण रहा। उसे कितना कठिन काम बतलाया कि गुरुवाणी ने कहा अमुक राजा की स्त्री का कुंडल लेकर के आओ, और फला दिन पर्व है, उस दिन कुंडल पहन करके पर्व मनाऊंगी, जाओ उस राजा का कुंडल लेके आओ। अब चौमासे का पर्व था, उसके आने में थोड़ी सी देरी हो गई, जिसमें गुरुवाणी जी श्राप देने के लिए तैयार हो गई। बोला अगर तू समय पर नहीं पहुंचा होता तो मैं श्राप दे देती। एक प्रकार से तलवार निकाल करके मारने के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार से उसके हुक्म का पालन करना आश्चर्यजनक था। प्राण भी देने को तैयार रहते थे। अपने तो साधन भजन में न तो प्राणों की बाजी लगती है, न कोई दंड है, न कोई बैंत मारना है, न कोई भोजन भिक्षा बंद है, न कोई दूध वगैरह बंद है, कोई कड़ाई है ही नहीं, फिर भी आप लोगों के अंदर क्यों ढिलाई है समझ में नहीं आता। आरुणी को उसके गुरु ने आज्ञा दी कि तू जा खेत में जो पानी बह रहा है उसको रोक के आ। तो वो फावड़ा लेकर गया और पानी को रोकने लगा, नहीं रुका तो खुद ही पसर गया और लेट गया। रात्रि के समय में वो नहीं आया तो शिष्यों से गुरुजी ने पूछा कि भाई वो आरुणी नहीं आया, हमने तो उसको पाल बांधने के लिए भेजा था। गुरुजी ने कहा कि चलो अपने उसकी खबर ले वे। तो सब शिष्यों के साथ गुरुजी गए और वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था। गुरुजी शिष्यों के साथ गए, खेत के निकट पर आवाज दी, अरे आरुणी आरुणी कहाँ हो, रात का समय हो गया, तुम आए नहीं हो, बड़ी चिंता हो रही है, क्या बात है। आरुण ने कहा गुरुदेव मैं यहाँ पाल बांध रहा था, पानी रुका नहीं तो मैं स्वयं अपने आप को लेट करके पानी रोक रहा हूँ। गुरुजी उसके पास गए, शिष्यों को साथ में ले जाकर कि बेटा उठो और अपने घर जाओ, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया, तुमने हमारी बात का इतना महत्व, जाओ तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया। शिष्यों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे ब्रह्म ज्ञान होता है। तो पूछो इससे पूछ लो, किसी भी प्रकार की बात पूछ लो। तब उससे कई प्रकार से ब्रह्म के विषय में प्रश्नोत्तर किए, वो धड़ाधड़ सब प्रश्नों का उत्तर देता गया। तो सबने गुरुदेव को प्रणाम किया। इस प्रकार से अपने नियमों में दृढ़ता आनी चाहिए।